आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं आफताब अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सैलाब से मुतासरा उत्तराखंड के लिए 12,000 करोड़ रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। उन्होंने देहरादून में एक मीटिंग के दौरान बादल फटने, बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। भारत ने जजीरानुमा मुल्क में बुनियादी ढांचे, रोजगार और हिफ्जान सेहत को मुस्तहकम करने की गरज से मॉरिशस के लिए खसूसी इकतसादी पैकेज का ऐलान किया है। नेपाल में उबुरी सरकार की तश्कील पर मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान बातचीत जारी है। सदर रामचंद्र पोडेल का कहना है कि आईनी फ्रेमवर्क के तहत मौजूदा सूरत हाल से निमटने की तमाम मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के गिरियाबंद जिले में एक तसादुम के दौरान 10 माओ नवाज मारे गए हैं। इंडोनेशिया के शहर बाली में सैलाब से कम 14 अफराद हलाक हुए हैं और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1,200 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। आज देहरादून में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासत के तबाही से मुतासरा इलाकों में राहत और बाज आबादकारी की कोशिशों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे खित्ते और इसके लोगों की बहाली के लिए मदद करने में कसीर रुखी रसाई अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसमें पीएम आवास योजना के तहत मकानों की तामीर नौ, कौमी शाहराहों को बहाल करना, स्कूलों की तामीर नौ, वज़ीर-ए-आज़म के कौमी राहत फंड के जरिए राहत फराहम करना और मवेशियों के लिए मिनी किट्स तकसीम करने जैसे इकदाम शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज रियासत के तबाही से मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से इस दौरे को मनसूख कर दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान ये घोषणा की। हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी दीर्घकालीन देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा। श्री मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित इस समय घोषित की जा रही सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही उत्तराखंड में नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा उन्मुख संगठनों के कार्मिकों के प्रयासों की सराहना की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के लिए आज एक खसूसी इकतसादी पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने, रोजगार के मौके पैदा करने और जजीरा नुमा मुल्क में सेहत देखभाल की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए है। जनाब मोदी ने यह बात उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ वसी पैमाने की बातचीत करने के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने चार मुख्तलिफ शोबों में चार मुआहदे किए। वज़ीर-ए-आज़म राम गुलाम कल रूहानी शहर वाराणसी पहुंचे थे। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह कहते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने का इरादा किया कि भारत और मॉरिशस दो मुल्क तो हैं, लेकिन हमारे ख्वाब एक ही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ शराकत दार नहीं बल्कि एक कुंबा है।
इंडिया एंड मॉरिशस आर टू नेशंस बट अवर ड्रीम्स एंड डेस्टिनी आर वन। इस वर्ष हम सर शिव सागर राम गुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी।
उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने मॉरिशस के नौ आबादियाती निजाम से आजादी और उसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने की हमेशा हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत से बाहर किसी दूसरे मुल्क में पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में कायम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि तवानाई का तहफ्फुज़ बाहमी शराकतदारी का एक अहम सुतून है।
भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिन फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है।
वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने मॉरिशस की यूनिवर्सिटी के साथ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
दोनों लीडरों के दरमियान बाहमी बातचीत में तआवुन की तमाम जहतों का अहाता किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी जोग्राफियाई इंतजामिया की तरबियत और टेलीमेट्री के शोबे में 4 मुफाहमत नामों का तबादला किया गया। बिजली के शोबे, छोटे तरक्याती प्रोजेक्टों और हाइड्रोग्राफी के लिए भारतीय इमदाद फराहम करने के 3 मजीद दस्तावेजात का भी तबादला किया गया। बातचीत में भारत और मॉरिशस के दरमियान तहजीबी राबते, रूहानी हम आहंगी और अवाम से अवाम के ताल्लुकात को बेहतर बनाने का भी एक बार फिर अहदा किया गया। वाराणसी से आलोक राय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म 9 से 16 सितंबर तक भारत के एक हफ्ता तवील सरकारी दौरे पर हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम का मकसद बैन अलाक्वामी सतह पर आमदोरफ्त को तेज और बिला रुकावट बनाना और इमिग्रेशन की क्लियरेंस में सहूलत पैदा करना है। ये भारतीय शहरियों और दिगर ममालिक से आने वाले भारतीय ओवरसीज मुसाफिरों के लिए ज्यादा सहूलत फराहम करेगा। ये प्रोग्राम ऑटोमेटेड बॉर्डर गेट्स या ई गेट्स पर चलाया जाएगा, जिससे इमिग्रेशन की क्लियरेंस में कम से कम इंसानी दखल होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस बात को उजागर किया कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम एक पुरएतमाद ट्रेवलर प्रोग्राम है जो इमिग्रेशन को तेज और रुकावट से मुबर्रा बनाता है। उन्होंने कहा कि इससे सहूलत और कौमी तहफ्फुज़ दोनों को फरोग हासिल होगा। जनाब शाह ने बताया कि इस प्रोग्राम का आगाज दिल्ली में पिछले साल किया गया था और अब इस सहूलत को मुल्क भर के 13 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक 3 लाख मुसाफिर इस पोर्टल पर अपना इंदराज कर चुके हैं।
कुल 13 एयरपोर्ट का एक साथ आज कार्यवाही शुरू हो रही है। सुनिश्चित रूप से बड़ा फायदा हुआ है। कोई लंबी लाइन नहीं, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं, कोई विलंब नहीं, सिर्फ 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस मिलता है। अब तक लगभग 3 लाख यात्रियों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण किया है।
वज़ीर मौसूफ ने मुत्तला किया कि पिछले 11 सालों में बैन अलाक़वामी मुसाफिरों की आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2014 में बैरून मुल्क जाने वाले भारतीय मुसाफिरों की तादाद 3,54,00,000 थी, जिसमें तकरीबन 77% का इजाफा होकर ये 6,12,00,000 हो गई है। जनाब शाह ने कहा कि उन गैर मुल्की मुसाफिरों की तादाद जिन्होंने भारत का सफर किया 2014 में 1,53,00,000 थी, जो अब बढ़कर 2024 में तकरीबन 2 करोड़ हो गई है।
2014 में भारतीय यात्री विदेश जाने वाले 3,54,00,000 थे और 24 में वो 6,12,00,000 हुए। 73% की वृद्धि हुई है। और विदेशी यात्री जो भारत आते थे वो 1,53,00,000 थे, उसकी जगह 24 में लगभग 2 करोड़ यात्री आए हैं, इसमें भी 31% की वृद्धि हुई है।
दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम और भारत के मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIMA के पहले बैन अलाक्वामी कैंपस का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात की वजीर तालीम सारा बिनत यूसुफ अल अमीरी के साथ साथ सीनियर वजरा ने शिरकत की। शेख हमदान ने IIM का दुबई में खैर मकदम किया और इसे भारत UAE के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की एक अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि IIMA का क्याम तालीम और सलाहियत के एक अहम आलमी मरकज के तौर पर दुबई की उमंगों के ऐन मुताबिक है। مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آئی آئی ایم اے کے افتتاح کو بھارت کی تعلیم کو عالمی سطح پر لے جانے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ دبئی کیمپس آئی آئی ایم اے کے انڈین ان اسپرٹ گلوبل ان آؤٹ لک کے اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل نے کہا ہے کہ فی الحال وہ صلاح و مشورہ کر رہے ہیں اور آئینی فریم ورک کے تحت ملک کے موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے کی تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جناب پوڈیل کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سرکاری پابندی اور بدعنوانی کے خلاف غم و غصے کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے ملک میں تشدد برپا ہے۔ پرتشدد تصادم میں کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور کے پی شرما اولی کو وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا ہے۔ صدر پوٹل نے ایک بیان میں کہا کہ وہ حالیہ بحران کا ایک آئینی حل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی بقا اور ملک میں امن و قانون کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں امن اور استحکام کو بحال کرنے میں تعاون کریں۔ کاٹھمنڈو، بھگت پور اور للت پور اضلاع میں کل صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گی۔ اس کے علاوہ مشرقی نیپال میں چین کے سرحد کے نزدیک سنگھوا سبھا میں انتظامیہ نے کرفیو لگا دیا ہے۔ کرفیو کے دوران میٹنگیں، ریلیاں، مظاہرے اور آمد و رفت ممنوع ہیں۔ ضلع دفتر نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سیکیورٹی افراد سخت کارروائی کریں گے۔ آج چھتیس گڑھ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 10 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ جو ہلاک ہوئے ہیں ان میں ماؤ نواز تنظیم کا ایک بڑا کمانڈر شامل ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو گریا بند ضلع کے مین پور علاقے میں بڑی تعداد میں ماؤ نوازوں کی موجودگی کے بارے میں خبر ملی تھی۔ اس کے بعد گریا بند E30 اور اسپیشل ٹاسک فورس نیس کوبرا بٹالین کی ایک مشترکہ ٹیم کو اس علاقے میں بھیجا گیا۔ آج صبح سے بھالو گڈی کے جنگلات میں سیکیورٹی فورسز اور ماؤ نوازوں کے درمیان رک رک کر دونوں جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ابھی تک اس جھڑپ میں خبر ہے کہ 10 ماؤ نواز ہلاک ہوئے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے چینی کی صنعت کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ صارفین کے امور کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کے ہمراہ بھارتی چینی اور حیاتیاتی توانائی کانفرنس کے تیسرے ایڈیشن میں شرکت کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ بھارت کی حیاتیاتی توانائی کا شعبہ بھی 20% ایتھنول کی آمیزش کے بعد ایک بڑا حصہ دار بن گیا ہے۔
شوگر کین فارمرز کا بھوشیہ شوگر انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور شوگر انڈسٹری ہمارے دیش کی اکانومی کی ایک بیک بون ہے۔ شوگر انڈسٹری کی اکانومک وائبلٹی شوگر انڈسٹری کے ساتھ الائڈ پروڈکٹس تیار کرنا زیادہ مہتوپورن ہے۔ جو بایو فیول میں ایتھنول کی اکانومی ہے ہماری سرکار نے ابھی 20% تک بلینڈنگ کیا ہے۔
سپریم کورٹ نے اس عرضی پر فوری سماعت سے آج انکار کر دیا جس میں دبئی میں 14 ستمبر سے شروع ہونے والے بھارت پاکستان ایشیا کپ T20 میچ کو منسوخ کیے جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ جسٹس جے کے مہیشوری اور وجے بشنوئی پر مشتمل ایک بینچ نے اس معاملے پر فوری طور سے سماعت کرنے سے انکار کر دیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ میچ کھیلا جانا چاہیے۔ بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آیوش شیٹھی ہانگ کانگ اوپن سپر 500 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج 2023 کے عالمی چیمپئن شپ کے چاندی کے تمغہ یافتہ جاپان کے کوڈائی ناراکوا کو 3 گیمز کے سخت مقابلے میں شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ آیوش نے سابق عالمی نمبر 2 جاپان کے بیڈمنٹن کے کھلاڑی کو 21-19، 12-21، 21-14 سے شکست دی۔ کل کوارٹر فائنل میں آیوش کا مقابلہ لکش سین سے ہوگا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سیلاب سے متاثرہ اتراکھنڈ کے لیے 12,000 کروڑ روپے کے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے دہرادون میں ایک میٹنگ کے دوران بادل پھٹنے، بارش اور مٹی کے تودے کھسکنے سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ بھارت نے جزیرہ نما ملک میں بنیادی ڈھانچے، روزگار اور حفظان صحت کو مستحکم کرنے کی غرض سے موریشس کے لیے خصوصی اقتصادی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ نیپال میں عبوری سرکار کی تشکیل پر مختلف فریقوں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ صدر رام چندر پوڈیل کا کہنا ہے کہ آئینی فریم ورک کے تحت موجودہ صورتحال سے نمٹنے کی تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کے لکش سین اور آیوش شیٹھی ہانگ کانگ اوپن کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔